कामाख्या इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर 10 महाविद्या है, 10 महाविद्याओं के मंदिर है वहीं पर। जैसे हम लोगों के पीरियड्स आते हैं एवरी मंथ, माँ साल में एक बार रजस्वला होती है, तो वो 3 दिन का ये पर्व होता है। 3 दिन माँ के गर्भगृह के पट भी बंद रहते हैं। जिस दिन बंद करते हैं, एक सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है, वो पूरा लाल हो जाता है। भारत में ना कई गढ़ हैं, वो सबसे बड़ा गढ़ जो है तंत्र का, वो कामाख्या ही है। शराब भी पी जाती है, मलमूत्र भी शरीर पर लगाया जाता है, सेक्स भी किया जाता है और मरी हुई स्त्रियों के साथ भी सेक्स किया जाता है। उल्लू की बलि भी दी जाती है, मुर्गे की बलि भी दी जाती है, भैंसे की बलि भी दी जाती है और नर बलियां भी दी जाती है। वहां पर बच्चों की बलियां भी दी जाती है। वहां तो ना पेड़ों में उन्होंने आत्माओं को कैद कर रखा है। आपको वो बोलेंगे कि चलिए इस पेड़ के पास तक चलिए, यहाँ तक चलिए, वो आपको।
नमस्कार, स्वागत है आपका जनजीवेदा के एक और एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माँ कामाख्या से जुड़े रहस्यों के बारे में और इसे तांत्रिकों का गढ़ क्यों कहा जाता है। और आज हम ये भी जानेंगे कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ 10 महाविद्याओं से कैसे रिलेटेड है। राधे राधे मैम।
राधे राधे।
कैसे हैं आप?
बहुत अच्छी।
स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट पे आने के लिए।
जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मैं अपने दर्शकों को कुछ अच्छी ज्ञान की बातें आज बता पाऊंगी।
तो मैम, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि जो ये महाविद्या होती हैं, ये क्या हैं और ये कितनी हैं?
ये महाविद्याएं जो हैं वो 10 महाविद्याएं हैं और इसकी जो कहानी है इसके पीछे, वो सती और शिव के साथ जुड़ी हुई है। जब राजा दक्ष ने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था यज्ञ के लिए और माता सती कुपित हुई थी और शिव जी ने उनको रोकना चाहा, तो उस समय 10 दिशाओं में, जो दिशाएं हैं ना वो 10 हैं,
जी,
तो 10 दिशाओं में वो 10 देवियां आई थी, तो वो 10 महाविद्याओं का रूप लेकर आई थी। तो इस प्रकार 10 महाविद्याएं हैं ये। अब इसमें काली कुल है, श्री कुल है, 5 देवियां जो है वो काली कुल में है और 5 देवियां श्री कुल में है। और श्री कुल की जो देवी है राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ, यही कामाख्या माँ है।
जी, तो ऐसे माँ कामाख्या के बारे में हम लोगों ने काफी सुना है कि उनकी जो शक्तिपीठ है उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है।
हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना वो वहाँ पर योनि रूप में वहाँ पर देवी स्थापित हैं, जो देवी की योनि, जैसे 51 शक्तिपीठ हुए थे, देवी के 51 अंग गिरे थे माता सती के, तो वहाँ पर योनि गिरी थी नीलांचल पर्वत पर। तो वहाँ मंदिर में जो गर्भगृह है वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, माँ की योनि विराजमान है और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जो सृष्टि है हमारी, उसका सृजन कहाँ से है? वहीं से है, तो वो सृजन की देवी है, राज राजेश्वरी है माँ त्रिपुर सुंदरी कामाख्या। और वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो एनर्जी है बहुत हाई है, कॉस्मिक एनर्जी वहाँ की बहुत हाई है उस मंदिर की। अब जैसे कामाख्या माँ के बारे में मैंने बताया, तो कामाख्या माँ एक इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है, जैसे तारापीठ है, तारा माँ वहाँ स्थापित है, बगलामुखी माँ है जहाँ पर, तो वहाँ पर सिर्फ बगलामुखी माँ ही है। कामाख्या इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं के मंदिर है वहीं पर, कामाख्या मंदिर में ही। और कामाख्या मंदिर से ही थोड़ा आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी पर उमानंद भैरव का मंदिर स्थापित है। तो जो माँ है, जब भी किसी भी शक्तिपीठ पर आप जाइएगा, भैरव जरूर होते हैं और भैरव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भैरव है वहाँ भैरवी है, माता ही भैरवी है और शिव ही भैरव है, तो हर जगह होते हैं। तो जब भी कोई कामाख्या जाए तो उमानंद भैरव के भी दर्शन अवश्य करें, वरना उसकी यात्रा असफल मानी जाएगी। साधना में भी जो लोग हैं वो भी उमानंद पर जाकर अपनी साधना कर सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब वहाँ जैसे साधना जो की जाती है, ऐसे तो पूरी साल ही साधना की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि 4 नवरात्रियां आती है ना, तो 2 जो मेन नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं, इनमें वहाँ साधनाएं होती हैं। और सबसे ज्यादा साधना का प्रभावी समय होता है अंबुवाची पर्व, जो कि अभी 21 जून से 24 जून तक वहाँ हर साल मनाया जाता है। उस समय देवी का पीरियड्स आता है, रजस्वला होती है देवी, जैसे एक लेडी के पीरियड्स आते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर गर्भगृह का 3 दिन मंदिर के पट भी बंद रहते हैं, उनको विश्राम दिया जाता है और वहां पर एक व्हाइट कपड़ा डाला जाता है और जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वो पूरा रेड होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो जल होता है उस समय वो पूरा रेड होता है, जैसे साइंटिफिकली कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर जो चमत्कार हो रहा है वो तो माँ का ही है ना।
जी
तो वो इतना प्रभावशाली कपड़ा होता है, प्रसाद में भी दिया जाता है लोगों को, आप उस कपड़े को अपने पास रखें, आपको जब प्रसाद में वो मिले, जो भी दर्शक वहां जाएं और उनको वो कपड़ा जब प्रसाद में मिले तो उसको अपने पास अपने पर्स में रखें, अपने साथ रखें। जो भी काम नहीं बन रहा है, काम बनते हैं उन पर माँ की साक्षात कृपा होती है, माँ की एनर्जी आ रही है ना उसमें साथ
जी
में,
जी जी
तो माँ साक्षात रूप से आपके साथ साथ होती हैं।
जी तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि माँ कामाख्या में सारी महाविद्याएं, इसलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे आपने बताया हर महाविद्या का एक भैरव होता है, तो ये क्यों हर जगह होते हैं?
हाँ जी, हर जगह आप किसी भी शक्तिपीठ पर चले जाओ माँ के साथ भैरव मिलेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति उन्हीं के ही ये रूप है ना। माँ के जो 51 शक्तिपीठ है वो शक्ति के ही रूप है, और जो शिव है वही भैरव है,
जी
तो भैरव के साथ भैरवी है और भैरवी माता पार्वती है, ये रूप अलग अलग बनाए हैं ना। तो माँ के साथ भैरव हर जगह है। अब माँ के आगे जो होता है भैरव होते हैं 64 योगिनियां होती हैं। जब हम किसी साधना में जब जाते हैं ना तो भैरव का भी हमको साक्षात्कार होता है, 64 योगिनियों का भी होता है, क्यों 8 मातृकाएं हैं। जब महिषासुर मर्दिनी जब बनी थी चंडिका, तो उनके साथ ना हर किसी ने अपनी अपनी शक्ति भेजी, जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मानी को भेजा, इंद्रदेव ने इंद्राणी को भेजा, जो कार्तिकेय जी हैं उन्होंने अपनी कौमारी शक्ति को भेजा, ऐसे 8 शक्तियां भेजी। जो महेश हैं शिव जी, उन्होंने माहेश्वरी को भेजा, तो सभी ने अपनी अपनी शक्तियां भेजी, 8 7 शक्तियां, 8वीं कौन थी चंडिका। ऐसे 8 मातृकाएं हुई और इन्हीं 8 मातृकाओं से 64 योगिनियां हुई, 64 योगिनियां हैं। अब जैसे 64 योगिनियां है ना, 64 ही भैरव है, जैसे आपने कहा ना 51 शक्तिपीठ, तो हर किसी के साथ योगनियों के साथ भी 64 भैरव हैं। तो माँ के साथ भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए जब आप साधना में हो। जो भी लोग माँ की साधना में है या फिर नॉर्मल हम लोग पूजा कर रहे हैं, तब भी भैरव की पूजा अवश्य करो। नवरात्रि में एक दीपक भैरव के लिए भी सरसों के तेल का लगाओ और भैरव की पूजा करो, फिर माँ की पूजा करो। 64 योगनियां जो है वो आपकी रक्षा करने भी आती हैं, और आपके जैसे कहते हैं ना कि आप किसी साधना में हैं तो वो देखेंगी आके कि आप उसके पात्र हो या नहीं, इसीलिए कभी कभी अनुभव होते हैं अलग अलग, तो वो इसीलिए होते हैं कि पहले योगिनियां आती हैं कि ये माँ तक जा रहा है, क्या ये व्यक्ति इसके पात्र है। तो इस तरह के बहुत सारे तथ्य हैं जो तंत्र से जुड़े हुए हैं।
तो मैम ये शक्तिपीठ और महाविद्या में क्या अंतर होता है?
जो शक्तिपीठ है वो देवी के सारे अंग गिरे हैं वहां पर, कहीं जैसे नैना देवी हैं तो उनकी आंखें गिरी हैं, कामाख्या में योनि गिरी है, ज्वाला जी में उनकी ये टंग गिरी हुई है जैसे, तो हर जगह उनकी जो जो जगह उनके अंग गिरे हैं 51, वो शक्तिपीठ हो गई। और जो महाविद्याएं हैं जैसे मैंने बताया वो प्रकट हुई थी, तो वो प्रकट हुई थी सती सती से ही है, सती के ही 51 अंग है और सती से ही 10 महाविद्याएं हैं। तो ये महाविद्याएं, अब जैसे तारा देवी हैं, उन्होंने शिव की पत्नी है, शिव से ही 10 महाविद्याएं सती से निकली हैं। लेकिन तारा देवी की एक कथा ऐसी भी सुनने को मिलती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी का विष पीने के कारण यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी, वो विष नीचे ना ले जाए, तो महादेवी ने हाथ लगा दिया था कि विष नीचे ना जाए, तो तारा देवी ने माँ बनकर शिव जी को दूध भी पिलाया। तारा देवी जो है, अब तारा देवी की जो साधना में होते हैं उनको कभी भय नहीं लगता, वो निर्भय हो जाते हैं। माँ बगला मुखी के जो साधना करते हैं उनको कभी शत्रुओं का भय नहीं होता, कितने भी कोर्ट कचहरी के मामले हों, शत्रुओं के मामले हों, माँ बगला मुखी जो है सबको काट कर देती हैं। तो इसी तरह से अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग 10 महाविद्याओं की पूजा या साधना की जाती है। वैसे 10 महाविद्याओं की साधना में बिना गुरु के नहीं जाना चाहिए, गुरु की आज्ञा से, गुरु की अनुमति से ही जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव बहुत अलग होते हैं।
तो मैम जैसे 10 महाविद्याएं, तो इनकी 10 अलग अलग मंदिर हैं, और जैसे जो शक्तिपीठ है इनक्यावन हमारे, तो उनके भी इनक्यावन अलग अलग मंदिर हैं।
हाँ जी, 51 शक्तिपीठ अलग अलग हैं, 10 महाविद्याओं के मंदिर अलग अलग हैं। जैसे राजराजेश्वरी है तो इनका प्रयागराज में एक मंदिर है, और जो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है तो वहाँ जो देवी हैं वो भी राजराजेश्वरी हैं 10 महाविद्याओं में। ऐसे ही बगला मुखी की भी 3 है, दतिया में भी है, नलखेड़ा में भी है ना। तो ये अलग अलग जगह 10 महाविद्याएं विद्यमान है, लेकिन जो शक्तिपीठ है जहाँ पर अंग गिरे हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन जो कामाख्या शक्तिपीठ है वहां पर दसों महाविद्याएं एक जगह हैं। जैसे अलग अलग मंदिर बता रही हूँ ना, वो दसों एक ही जगह हैं। कामाख्या शक्तिपीठ भी है जहाँ योनि माँ की गिरी है, और वहीं पर 10 महाविद्याएं हैं, तो इसलिए वो जागृत शक्तिपीठ है।
तो मैम, जैसे माँ कामाख्या के बारे में बताया आपने कि वो शक्तिपीठ है और वहाँ पे 10 महाविद्याएं भी हैं, तो इसलिए वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो माँ कामाख्या के बारे में, वहाँ पे बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं ऐसा सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
हाँ, माँ कामाख्या जो है वो तंत्र का गढ़ कहा जाता है, और उसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं। अब जैसे माँ कामाख्या से पहले बताना चाहूंगी, वहाँ पे एक मयंग गांव है, तो उस गांव में ज्यादातर तामसिक साधक रहते हैं। उल्लू की बलि भी दी जाती है, मुर्गे की बलि भी दी जाती है, और भैंसे की बलि भी दी जाती है, और नर बलियां भी दी जाती हैं वहां पर। अब जैसे कोई कामाख्या जाए और जागरूकता वश या उत्सुकता बस क्या होता है कि हमें मयांग गांव जाना है, लेकिन वहां गांव में नहीं जाना चाहिए, वहां से दूर ही रहना चाहिए। वहां पर बच्चों की बलियां भी दी जाती हैं, क्योंकि वो तामसिक तरीके से प्रक्रियाएं कर रहे हैं सारी। अब कामाख्या मंदिर में जो तामसिक साधक होते हैं, तो मंदिर के ही थोड़ी दूरी पर एक जगह है जहां पर वो लोगों की बलियां देने के बाद उनकी हड्डियां तक जलाते हैं। हड्डियां जलाने के बाद वो धुआं इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल इंसान वहां जाएगा तो उस धुएं को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, वहां तामसिक गण जाता है ना। तामसिक प्रक्रियाएं इस तरीके की होती हैं कि शमशान में, जैसे आपने सुना होगा, अघोरी तंत्र जो होते हैं, तो वो अघोरी तंत्र भी वहां सबसे ज्यादा होते हैं। वहां इस तरह की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, पंचमकार में, बामाचार में बताया गया है 5 तरीके से तंत्र में, तो वहां वही सब कुछ होता है। शराब भी पी जाती है, मलमूत्र भी शरीर पर लगाया जाता है, सेक्स भी किया जाता है, और मरी हुई स्त्रियों के साथ भी सेक्स किया जाता है। वो उनकी एक प्रक्रिया होती है तंत्र की, तो वही सारी तामसिक क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन अगर जो सात्विक लोग हैं, मेरे जैसे लोग भी सात्विक, वहां बैठकर अपने मंत्र को, अपने जप को वहां जागृत कर सकते हैं। बहुत हाई एनर्जी है। तो ये तो डिपेंड करता है किस तरीके की क्रियाएं की जा रही हैं। अब वहां ना नरकासुर की एक कहानी है जो वहां बड़ी प्रचलित है, उस मंदिर से जुड़ी हुई। नरकासुर जो था वो भगवान विष्णु के तृतीय अवतार बरा भगवान हुए थे, वो पृथ्वी माँ को निकाल के लेके आए थे। फिर सोरो सूकर क्षेत्र एक जगह है, वहां पर आकर उन्होंने उसको स्थापित किया पृथ्वी को। तो माँ पृथ्वी जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से नरकासुर की उत्पत्ति हुई। अब नरकासुर वैसे देवी का बहुत बड़ा भक्त था, देवी की भक्ति करते करते, नरक नाम था पहले उसका, लेकिन उसकी संगति हो गई असुरों के साथ। तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत,
जी
उस पर पूरा असर आने लगा असुरों का। अब उसने माँ से इच्छा प्रकट की, जहां वो माँ को देवी रूप में पूज रहा था, उसने कहा मुझे आपसे शादी करनी है, विवाह प्रस्ताव रख दिया। माँ उसकी सारी बात को समझ गई। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम ये मंदिर की सीढ़ियां एक रात में बना दो और मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। वो बनाता जा रहा था, लेकिन माँ ने छल किया। उनको पता था कि ये बना लेगा, लेकिन माँ शादी थोड़ी ना करती उससे।
जी
माँ क्रोधित थी, उन्होंने मुर्गे की बांग पहले ही करवा दी, समय से पहले। तो उसको लगा कि सुबह हो गई, सूर्यास्त और सॉरी सूर्योदय हो गया, और उसने वहीं वो कार्य रोक दिया। लेकिन जब उसको पता चला तो वो क्रोधित भी हुआ। नरकासुर का जो वध हुआ था वो श्री कृष्ण ने किया था, और ये एक चीज देवी पुराण में वर्णित है। कालिका पुराण है, योगिनी तंत्र है, और देवी पुराण। तो देवी पुराण में ये वर्णित है कि जो कृष्ण है वही काली है और वही कामाख्या है। तीनों के बीज मंत्र अगर आप देखेंगे, तीनों के बीज मंत्र एक ही है। क्लीम, क्लीम की बीज मंत्र किसका है? जब काली का बीज मंत्र आप देखेंगे क्लीम, माँ कामाख्या का बीज मंत्र क्लीम, और श्री कृष्ण का भी जो बीज मंत्र है वो क्लीम है। अब आपने मंत्र सुना होगा, ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, तो उसमें जो बीज मंत्र आया है वो क्लीम है। तो देवी पुराण में ऐसा वर्णित है, कृष्ण ही काली है और जो शिव है वो राधा है। तो ये कथा यहाँ से जुड़ी हुई है।
तो मैम, ऐसे एक और स्टोरी मैंने सुनी थी कि जो वहां के राजा हुए थे उनके वंश के लोग माँ कामाख्या के द्वार पे नहीं जाते।
हाँ जी, आज भी राजवंश के जो लोग हैं वहां पर आंखों पे पट्टी बांध के जाते हैं, मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित है, और अगर अंदर जाएंगे तो वो आंखों पे पट्टी। उसके पीछे कहानी है, मंदिर के जो पुजारी थे माता की, अंदर गर्भगृह में अंदर बैठकर वो साधना करते थे, और माँ आकर वहां नृत्य करती थी। तो ये बात जब राजा को पता चली कि होता क्या है, तो राजा ने मंदिर के पुजारी से कहा, उन्होंने पहले मना किया, फिर राजा ने बहुत उनको समझाया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे देखना है, तो उन्होंने कहा मंदिर के अंदर तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, मंदिर के बाहर से आप कहीं से देखें तो देख सकते हैं। तो राजा जो नारायण राजा थे वो छुपकर देख रहे थे ये सारी चीजें। तो जब उन्होंने ये छुपकर देखा तो माँ को तो पता चल जाएगा, वो त्रिलोक की वासिनी है, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कोई मुझे छुपकर देख रहा है। उन्होंने वही राजा को अग्नि में तो भस्म किया, और जो साधक थे मंदिर के पुजारी थे उनको श्राप दिया और वो पत्थर की मूरत बन गए जो उसमें आज भी वहां विद्यमान है। तो तब से ये श्रापित हैं राजवंश के, वहां कोई भी राजा के वंश के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग जाते भी हैं तो आंखों पर पट्टी होती है उनकी।
और जैसे अभी आपने बताया नरकासुर के बारे में कि वो सीढ़ियां बना रहा था, बट वो पूरी सीढ़ी नहीं बना पाए, तो आज भी वहां पे
वहां पर सीढ़ी है, वो आप जब जाएंगे देखेंगे वो स्थान है कि वो सीढ़ी अधूरी रह गई है, वो जगह भी है। अभी यही मंदिर के आसपास इस तरह की गुफाओं का भी वर्णन है जो बहुत ही रहस्यमयी है, उनका ब्रह्मपुत्र की नदी तक उनका छोर है, और वो गुफाएं ऐसी हैं कि आज भी उनमें कई सारे साधक अपनी साधनाएं करते हैं। वहां हर तरह की साधनाएं होती हैं, शव साधनाएं भी होती हैं, अघोरी साधनाएं भी होती हैं, शमशानी साधनाएं भी होती हैं, और वहां पर सात्विक साधनाएं जैसे मैं बता रही हूँ वो भी होती हैं। अब पशु बलि का जो है, तो पशु बलि का पहले तंत्र में कहीं भी वर्णित नहीं था। कुलावड़ तंत्र जो है उसमें तो शिव जी ने ये कहा है कि जिसने पशु की हत्या कर दी उसके तो जन्म खराब हो गए,
जी
है ना। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला लोगों ने अपने हिसाब से अपने अनुसार चीजों को बदलना शुरू कर दिया, तो वहां पर भी नर बलि, जैसे नर बलि स्टार्ट हुई, पशुओं की बलि स्टार्ट हुई, भैंसे की बलि, बकरे की बलि, सब बलियां दी जाती हैं जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, कि बच्चों को टारगेट बनाया जाता है। अब जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो गया किसी साधक के पास कि आप मेरा कुछ ऐसा कीजिएगा कि मेरे बच्चे हो जाए, तब वो बच्चे की बलि देगा, ये गलत क्रियाओं में जुड़ गए और फिर आपके बच्चे हो जाएंगे। लेकिन गलत प्रोसेस से कोई भी काम नहीं कराना चाहिए,
जी।
लोग अंधे हो जाते हैं, मोह में अंधे हो जाते हैं और वो गलत प्रोसेस में चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की क्रियाएं कभी नहीं करानी चाहिए।
तो जैसे अभी भी वहां पर नरबलि दी जाती है।
हाँ, नरबलियां दी जाती हैं, जैसे मैं मयांग गांव बार बार बता रही हूँ, वहां तो होते ही सारी इस तरह की चीजें हैं, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, जैसे बार बार मैं आपको बताया अभी, सारी बलियां दी जाती है। और वहां तो ना पेड़ों में उन्होंने आत्माओं को कैद कर रखा है, आपको वो बोलेंगे कि चलिए इस पेड़ के पास तक चलिए, यहाँ तक चलिए, वो आपको वशीभूत कर लेते हैं। तभी मैंने कहा ना कि किसी को भी उन गांव में नहीं जाना चाहिए।
तो कामाख्या धाम भी नहीं जाना
नहीं,
चाहिए।
कामाख्या धाम जाओ, कामाख्या माँ के मंदिर में जाने के लिए मनाही नहीं है, वहां जाओ दर्शन करो, हर इंसान को एक बार जरूर जाना चाहिए। और कोशिश करो कि अंबुबाची के समय जाओ, बहुत ऊर्जा वहां की हाई होती है, इस समय जाने पर तो माँ की साक्षात कृपा आप पर हो रही है। लेकिन इस समय जो साधक वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में भी माँ कामाख्या की तस्वीर लाकर, अब माँ कामाख्या की तस्वीर कैसे, सदा त्रिपुर सुंदरी माँ की तस्वीर आपको लानी है, और माँ जो है त्रिपुर सुंदरी वो सदाशिव के ऊपर बैठी हुई है, कभी भी आप फोटो देखना उनके 6 मुख हैं माँ के और सदाशिव के वो ऊपर बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि शक्ति के बिना शिव जो है वो शव है, लेटे हुए हैं, तो माँ का वो स्वरूप है। उनकी मूर्ति अपने घर में चित्र रखिएगा, स्थापित कीजिएगा, और अंबुबाची के जो पर्व काल है 21 जून से जो ये स्टार्ट होगा, उसी समय अपने घर में माँ कामाख्या की आप साधना कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। मंत्रों को 4 दिन में, 3 दिन वो समय होता है, चौथे दिन पट खुलते हैं, तो इन्हीं 4 दिनों में आप किसी भी अपने मंत्र को जागृत कर सकते हो साधना में।
मैम जैसे आपने बताया कि नरबलि भी दी जाती है, तो अभी भी दी जाती है नरबलि, तो लोगों को जैसे आपने बताया बच्चे की भी, तो क्या किडनैप करके बच्चों की बलि दी जाती है?
हाँ, बच्चों को किडनैप किया जाता है, बड़े लोगों को किडनैप किया जाता है। अब जैसे ना महिलाओं की, जब वो मैंने बताया कि महिलाओं के शव के साथ भी शारीरिक क्रियाएं वहां होती हैं, तो उनको भी वशीभूत करके पहले मारा जाता है, वशीकरण करके उनको किडनैप किया जाएगा, फिर मारा जाएगा, और उसके बाद फिर वो तामसिक क्रियाएं सारी की जाती हैं।
मैम जैसे कुछ लोग होते हैं स्वयं को समर्पण भी कर देते हैं, तो वो भी बलि में काउंट होता है?
हाँ, वो भी बलि में काउंट होता है। कई लोग होते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं बलि दे दूंगा, अपनी बलि दे दूंगा, अपने बच्चे की, बहुत सारे अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, तो जो भी वहां वचनबद्ध होके आते हैं तो फिर उस तरह की बलि देते हैं। लेकिन देवी ने क्या कहा है, बलि किस चीज की देनी है, अपने अभिमान की देनी है, अपने अपने बलि देवी को दो, वहां बोल के आओ कि हम अपने अभिमान की बलि दे देंगे, हमारा ये काम हो जाए। लेकिन लोग होता क्या है कि गलत की तरफ ही ज्यादा मुड़ते हैं, तो वो बोलते हैं मेरा ये काम हो जाए, मैं किसी बच्चे की बलि दे दूंगा, मैं बकरे की बलि दे दूंगा, या मैं अपनी बलि दे दूंगा। इस तरीके से वहां मुराद है, जो कहते हैं ना मुराद पूरी करनी है, अब हमारी ये काम पूरा हो गया तो हमको देवी का अब ये काम करना है, तो वहां इस तरीके के वचनबद्ध होके आते हैं। जबकि उनको वहां बोल के आना चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए, मैं अपने अभिमान की बलि दे दूंगा। सबसे बड़ी बलि है, हर किसी में आ जाता है अभिमान,
जी
और जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि रावण का भी विनाश हुआ था
जी
अभिमान से ही हुआ था। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं वहां होती है। और वहां कामाख्या में ना बहुत अलग अलग तरह की, कि अब जैसे बलि पर ही बात हो रही है, मैंने जैसे आपको बताया नरमुंड, तो केवल नरमुंडों की वहां पर प्रक्रियाएं होती हैं, नर कंकाल जो होते हैं इन पर प्रक्रियाएं होती हैं, तामसिक इन पर भी तंत्र होते हैं, तो अलग अलग तरीके के ये प्रोसेस हैं वहां पर, ये चीजें होती हैं। तो जब भी जाए तो थोड़ा सावधान बच्चों को लेकर तो रहें, क्योंकि बच्चे किडनैप किए जाते हैं।
जी तो जैसे आपने बताया कि नरबलि, तो ये सब चीजें बंद क्यों नहीं हो पा रही हैं वहां पर? क्या
बंद नहीं हो पा रही क्योंकि वहां का प्रचलन हो चुका है ये।
माता जल्दी सुनती हैं बलि देने की?
माता तो कभी नहीं कहेगी कि बलि दो, माँ तो कभी कहेंगी नहीं, ना किसी तंत्र में लिखा है। योगिनी तंत्र हो गया, कालिका पुराण हो गया, या भैरव तंत्र हो गया, किसी भी तंत्र में नहीं लिखा है कि हमें इंसान की बलि देनी है। कुलावड़ तंत्र में अभी मैंने जैसे बताया है कि पशु हत्या कर दी, नर हत्या कर दी, तो आपने बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या कर दी, है ना। लेकिन लोग अपने स्वार्थवश उसको बनाया, और स्वार्थवश ही उसको, एक कहते हैं लीक पर चलते चले आ रहे हैं, उस लीक को उन्हें हटाना नहीं है। वही चीज है कि हमारा काम हो जाए, चाहे गलत तरीके से हो जाए, तो बस उसी प्रोसेस को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वरना बलियों का प्रावधान नहीं है, तंत्र में कहीं उल्लेख नहीं है।
तो जैसे अभी आपने बताया कि वहां जाएं तो सावधान रहें, तो जैसे कोई तो सिर्फ घूमने पर्पस से जाता है, माता के दर्शन के उससे जाता है, तो वहां पे तो इतने सारे तांत्रिक होंगे, तो जैसे हम जा रहे हैं घूमने तो क्या पता वो हमारे ऊपर ही तंत्र क्रिया कर दें।
नहीं, ऐसे नहीं होता है कि हर तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र कर दे। जैसा कि मैं एक गांव का वर्णन बार बार कर रही हूँ, वहां गांव में नहीं जाना चाहिए, वहां पर तो आपको किया ही वशीकरण जाएगा और वो ले जाएंगे। मंदिर में भी कई लोग होंगे, तो हमें सिर्फ माता के दर्शन करने जाना है, तो हमें ज्यादा अपनी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम ना किसी से ज्यादा बातचीत करें, ना घुलने मिलने की कोशिश करें, सिर्फ माता के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करें और वापस आ जाएं।
वहां पे प्रसाद वगैरह भी?
प्रसाद ले सकते हो आप, माँ के मंदिर में जो आप चढ़ा रहे हो वो प्रसाद ले लो, और अन्य कोई प्रसाद दे रहा है तो ऐसा मेरा मानना है कि आप वो प्रसाद ले लो, पर ग्रहण मत करो। नहीं पता ना कि किस
उद्देश्य
उद्देश्य से वो आपको दे रहा है, तो वो ग्रहण मत करो।
तो हम जैसे अभी आपने बताया कि वहां पर एक पर्व मनाते हैं अंबुबाची पर्व,
जी,
तो उस पर्व में क्या होता है, कैसे मनाया जाता है?
अंबुबाची जो होता है ना, माँ उस समय, जैसे हम लोगों के पीरियड्स आते हैं एवरी मंथ, माँ साल में एक बार रजस्वला होती है, तो वो 3 दिन का ये पर्व होता है। 3 दिन माँ के गर्भगृह के पट भी बंद रहते हैं और माँ को भी आराम दिया जाता है। चौथे दिन वो खुलेंगे, फिर उसका पर्व मनाया जाएगा, पूजा होगी, और वहाँ बंद कपाट के अंदर जिस दिन बंद करते हैं, एक सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है, वो पूरा लाल हो जाता है माँ के रक्त से, फिर उसी को प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है। तो वो जो 3 दिन है, और चौथा दिन जिस दिन पट खुल रहे हैं, वो 4 दिन तक वहाँ मंदिर के आसपास आप बैठकर अपनी कोई भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपनी कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, क्योंकि वो समय है कि जब माँ इस सृष्टि की संचालक है ना, माँ उनकी शक्ति बहुत हाई हो रही है। किसी भी लेडीज की जब पीरियड्स आते हैं तो ऊर्जा बहुत, एनर्जी जो होती है ना, बहुत हाई हो चुकी होती है। माँ की एनर्जी ऑलरेडी, माँ की एनर्जी है इतनी हाई है, और उस टाइम पर एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उसी समय कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, कुछ भी वहां बैठकर जागृत किया जा सकता है। तो ये अंबुबाची पर्व माँ के पीरियड्स के टाइम के लिए जो है, उसी के मतलब कहते हैं ना कि वो चीज को वो सेलिब्रेट करते हैं, माँ के इस चीज को। और जैसे कई बार कहा जाता है कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, शास्त्रों ने नियम बनाए हैं और उनको हमें फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन मानसिक पूजा की मना नहीं होती है। आप मानसिक पूजा करो, पीरियड्स में भी मानसिक पूजा करनी चाहिए। आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, नियमित डेली कर रहे हैं, तो आप वो पीरियड्स में स्टॉप ना करें। मालाएं अलग अलग रखो, मंदिर की माला अलग है और आपके पीरियड्स टाइम की जो माला है वो अलग है, तो पीरियड्स में भी आप माला जाप ना छोड़ें, वो करते रहें, माला अलग रखनी है बस, लेकिन जाप को नहीं तोड़ना है। जब आप नियमित किसी जाप संख्या में हैं। और पीरियड्स में जैसे बहुत से लोग यहाँ माता के साथ ही हनुमान जी भी होते हैं, तो बताना चाहूंगी हनुमान जी के लिए महिलाओं का स्पर्श मत करो या पूजा मत करो, ये सब मिथ है। हनुमान जी गर्भ से ही पैदा हुए हैं, अंजनी सुत हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा की जा सकती है। माँ के साथ हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जैसे भैरव की मैं बता रही हूँ, तो उनकी पूजा भी। पीरियड्स अगर किसी के आ जाए तो आप मानसिक पूजा करो, हनुमान चालीसा मानसिक करो, मुंह से मत बोलो, मंदिर मत जाओ, पर लेकिन मानसिक करो, आप कर सकते हो और हनुमान जी को स्पर्श भी कर सकते हो। तो अभी किसी के पीरियड्स आ जाए और माँ की पूजा चल रही है उसकी, और साथ में हनुमान जी की करनी है, भैरव की भी करनी है, तो सबकी आप मानसिक पूजा कर सकते हो।
और जैसे अभी आपने बताया कि वहां पर उस समय साधक जाके अपनी कोई भी साधना कर सकते हैं, तो वहां पर इंसान जैसे कोई आम इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो किस प्रॉब्लम के लिए जाते हैं वहां?
किसी भी माँ कामाख्या काम रूपी है, सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। आपकी कोई भी इच्छा हो उसकी पूर्ति माँ कामाख्या करेगी, लेकिन वो बशर्ते इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि किसी के अहित के लिए ना हो। सात्विक लोगों की बात कर रही हूँ, अहित के लिए तो फिर वो तामसिक लोग करते ही हैं वहाँ प्रक्रियाएं, लेकिन सात्विक लोग जो हम लोग जा रहे हैं, किसी भी कामना से आप जाओ माँ पूर्ण करेगी,
और
1 साल के अंदर वो पूर्ण कर देगी माँ।
वहां पर तंत्र क्रियाएं भी होती है, तो कौन कौन सी तंत्र क्रियाएं वहां पर लोग करते हैं?
तंत्र तो बहुत तरीके के वहां पर होते हैं, तंत्र तंत्रों का गढ़ है। अब जैसे भारत में ना कई गढ़ हैं, वो सबसे बड़ा गढ़ जो है तंत्र का वो कामाख्या ही है, दूसरा खजुराहो है, तीसरा जो मेहंदीपुर बालाजी है वो है, वहां आपने देखा होगा भूत वगैरह सब भाग जाते हैं वहाँ। तो इस तरीके से 3-4 गढ़ मुख्य गढ़ हैं भारत में जो तंत्र के गढ़ हैं, और सारी तांत्रिक क्रियाएं वहाँ होती हैं। तो माँ कामाख्या इसलिए तंत्रों का गढ़ कहा गया है कि 10 महाविद्या, जो 10 महाविद्या साधक हैं वो वहाँ जरूर जाएंगे, जो भी महाविद्या साधक हैं वो वहाँ जरूर जाएंगे सात्विक तरीके से अपने तंत्र को जागृत करने के लिए। जो तामसिक है वो भी जाएंगे, नॉर्मल हम इंसान तो दर्शन के लिए जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं, तंत्र के ये गढ़ है। तो तंत्र के गढ़ में क्या होता है कि तंत्र क्या एक सिस्टम है, एक विधि है, किसी भी चीज को करने की आपकी विधि क्या है, तो वहां कामाख्या में जाकर उस विधि का पालन करते हैं वो। अब जैसे दक्षिणाचार्य हो गए या वामाचार, किस जैसे दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी, आप किस मार्ग से आगे बढ़ रहे हो, इसमें 2 मार्ग हैं तंत्र में। तो जो वाम मार्गी होते हैं, अब पंचमकार हो गया, उसमें जैसे मैं बता रही थी मैथुन भी आता है, उसमें उसमें मत्स्य मछली मतलब मछली का सेवन भी करना है, मांस का भी, मदरा का भी, तो होता है ना जो मैं तामसिक बता रही थी कि वो पीते भी हैं, खाते भी हैं, मलमूत्र भी लगाते हैं, तो वो इस तरह की क्रियाएं हो गई। दक्षिण मार्गी जो हो गए वो सात्विक साधक, सीधे हाथ का, सीधे हाथ की पूजा, बाएं हाथ की पूजा, इस तरीके से तंत्र में बताई गई है। तो वो दोनों का गढ़ है, दोनों तरह के साधक वहां जाते हैं। अब शिव जी ने तो ये भी नहीं बताया था कि मांस खाना है, मदिरा पीनी है, शिव जी ने तंत्र में कहीं नहीं बताया है, उन्होंने इसकी भी अलग अलग बताई है कि अब जो कुंडलिनी है मूलाधार से शक्ति गई सहस्त्रार तक, तो वहां मैथुन के लिए क्या बताया, यहाँ लोगों ने क्या करा कि शव के साथ भी क्रियाएं कर रहे हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया सेक्सुअल, वहां बताया मूलाधार से शक्ति गई सहस्त्रार और हो गया मिलन, तो उन्होंने मैथुन इसको बताया। तो चीजें शिव जी ने तो अलग बताई, लेकिन हम लोगों ने धीरे 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 अपने तरीके से उसको अलग कर दिया। मदिरा, काल भैरव मदिरा पीते हैं उज्जैन में, वो एक अलग विषय है, पीते हैं ठीक है, लेकिन मदिरा कौन चढ़ाए? अब आप भी वहां जा रहे हो तो ये है कि मदिरा का आपको प्रसाद लेना भी है, चढ़ाना भी है, और स्पेशली जो लोग पीते हैं वो क्या कहते हैं, मदिरा चढ़ाएंगे भी पिएंगे भी प्रसाद है, लेकिन वो मदिरा नहीं बताई है, आसव बताए हैं जो फलों के रस से बनते हैं, गुड़ से बनते हैं, अजवाइन से बनते हैं, तो वो आसव बताए गए हैं कि वो आसव चढ़ाओ सात्विक लोग, लेकिन हुआ क्या, जो तामसिक लोग कर रहे हैं वही हम सात्विक लोग करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से बताई गई चीजें तो बहुत अलग है। शिव जी ने जो तंत्र का रूप बताया है बहुत सुंदर बताया है, माता पार्वती को तंत्र कहाँ से आया, शिव जी से आया, शिव जी ने माता पार्वती को इसका ज्ञान दिया, फिर जब धीरे 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 लोगों ने अपने हिसाब से इसकी तंत्र की बुक लिखी है ना, शास्त्रों से, पुराणों से ये निकला, वेदों से, फिर इसको बदलते गए, अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसको लिख दिया और उसी हिसाब से सब लोग इसको फॉलो करने लग गए। तो जैसे मैंने बताया ना पंचमकार होता है, उसमें भी मदिरा भी है, मांस भी है, तो वो क्या है, मैथुन भी है, 5 तरह से होती है वो क्रियाएं, तो वो सब अलग है। जैसे मैंने बता दिया कि मैथुन ये है, शक्ति को मूलाधार को पहुंच, मूलाधार से शक्ति को अपनी सहस्त्रार तक पहुंचा लो, हो गया दोनों का मिलन, अब मिलन वहां मिलन वैसे कर लिया। तो इसी तरीके से कामाख्या में बहुत अलग अलग तरीके के तंत्र किए जाते हैं। आप वहाँ किसी भी तरीका का तंत्र कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो ऐसा गढ़ है।
तो मैम जब भी तंत्र क्रियाओं की या तंत्र की बात आती है तो ऐसे ही लोना चमारन का नाम सुनने में आता है हर जगह, तो वो कौन थी?
लोना चमारन जो थी वो असम की बहुत प्रख्यात एक तंत्रविद थी, जैसे ना तंत्र की सिद्धियां कर रखी थी, और ऐसा मानते हैं लोग कि वो आज भी वहां पर जीवित हैं। और उन्होंने शावर मंत्रों की सिद्धि करी थी। शावर मंत्र सबसे जल्दी काम करते हैं। शावर मंत्रों में दुहाई दी जाती है किसी की भी, जैसे ना वो देसी भाषा में होते हैं मंत्र, क्या होते हैं संस्कृत में होते हैं, वो देसी जो भी प्रांतीय भाषा होती है ना उन भाषाओं में होते हैं वो। तो असम में ऐसा माना जाता है आज भी कि वो जीवित हैं, और उन्होंने 52 कलुए जो होते हैं उनको सिद्ध कर रखा था। बहुत बड़ी तंत्र का उनका जो तंत्रों का गढ़, जैसे कामाख्या बताया है ना, तो लोना चमारन जो थी उन्होंने तंत्र जो शुरू करा था वहां पर, पहली महिला थी वो जिन्होंने तंत्र की सिद्धियां चालू करी थी। और उन्होंने एक गांव में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर, और ऐसा मतलब ऐसा कथाओं में मिलता है कि उस पेड़ से उन्होंने कुछ आत्माओं को भी सिद्ध किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वहां के लोग ही बताते हैं इस बारे में कि ये कथाएं हैं एक तरह की। तो लोना चमारन जो थी शावर मंत्रों का प्रयोग करती थी। असम भाषा में वो मंत्र लिखे हुए हैं सारे, जैसे हिंदी में भी बहुत सारे हैं। हर देवता के शावर मंत्र होते हैं, हनुमान जी के भी होते हैं, उसमें ना दुहाई दी जाती है, और शावर मंत्र सबसे जल्दी काम करता है। और जो लोग आपने देखा होगा ना, जैसे सपोज मेहंदीपुर बालाजी हो गया, या कई बालाजी मंदिर होते हैं, तो या काली मंदिर होते हैं, वहां पर जो झाड़ा लगाते हैं वो लोग, वो शावर मंत्रों का ही लगाते हैं। कहते हैं ना भूत भगाने का या नजर भगाने का, वो सारे झाड़े शावर मंत्रों के ही होते हैं, क्योंकि शावर मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। हालांकि प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है उसमें, खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिद्ध बहुत जल्दी होता है।
तो मैम जैसे कोई किसी पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं करा देता है, तो जैसे हमें हमारे ऊपर किसी ने करा दिया, तो हमको कैसे पता चले कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है?
अभी क्या होता है ना प्रिंसी जी, कि कई बार हमारी सक्सेस को लेके कराई, तो अचानक से आप राइज कर रहे होते हैं और डाउन हो जाते हैं। आप अचानक से आप जैसे राइज कर रहे हैं और डाउन हो जाए, समझ लीजिएगा ब्लैक मैजिक है। अचानक से आपको प्रमोशन मिला है, आप अपनी जॉब में, बहुत अच्छी जॉब आपकी जा रही है, करियर ग्रोथ हो रही है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसा होता है कि आपकी जॉब छूट गई, अचानक से आपके ऊपर क्रिया कराई गई है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से इतने झगड़े होना स्टार्ट हो जाए कि आपकी नौबत डिवोर्स तक पहुंच जाए, ब्लैक मैजिक है। बच्चे बहुत पढ़ाई में मन लग रहा है और उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है बच्चे का क्लास में, लेकिन वही बच्चा पिछड़ता जा रहा है क्लास में, क्रिया है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। किसी की हेल्थ बहुत अच्छा, इंसान है कहते हैं ना बहुत स्वस्थ है ये तो, और इसको तो सर्दी जुकाम के अलावा कभी कुछ होता ही नहीं है, और उसको कोई बड़ी बीमारी लग जाए, ब्लैक मैजिक है। ये सारी चीजें ऐसे पता की जा सकती हैं। घर में ना ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया है तो आपको ना वाइब्स घर की चेंज होती हुई महसूस होंगी, अजीब सी ना स्मेल आती है, कुछ नहीं जल रहा है लेकिन आपको महसूस होगा कुछ जल रहा है, कोई स्मोक नहीं कर रहा है। सपोज मेरी फैमिली में कोई स्मोकिंग नहीं करता है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि कोई स्मोक कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि कोई कपड़ा जल रहा है उसकी स्मेल आ रही है, आपको फील हो रहा है कि कोई दूध तो नहीं जल गया, कुछ इस तरह की अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, ब्लैक मैजिक है। नॉर्मल नहीं है घर में। एक होता है ना फ्रेग्रेंस आ रही है,
जी
मतलब देवी देवता सारे घर में मौजूद हैं, पॉजिटिव एनवायरमेंट है, और कोई गंदी स्मेल आ रही है तो कोई नेगेटिव एनर्जी घर में आ चुकी है। अब इसी तरीके से अगर आपको पता करना है तो एक नींबू लो, पूरी घर के फैमिली के सर से घुमा लो एंटी क्लॉक 7 टाइम, पूरी फैमिली के भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर किया है तो अपने ऊपर से भी उतार के और उसको रख दो। दो तरीके हैं, एक तो पानी में डाल के रख दो, सुबह अगर पानी में डूबा हुआ मिल रहा है मतलब कि ब्लैक मैजिक है। एक आप अपने सिरहाने रख दो, रात को हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लग जाए, है ना, अगर ब्लैक मैजिक है तो, लेकिन सुबह उठ के जब काटोगे तो नींबू काला मिलेगा, ब्लैक मैजिक है, ऐसे पता कर सकते हैं। अब ब्लैक मैजिक अगर थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसेस में हुआ है तो उसको आप स्वयं भी काट सकते हो, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी पूजा पाठ से, अपनी शक्ति से। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप साधनाओं में हैं, तो आप खुद भी ब्लैक मैजिक को काट सकते हैं। उसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, फिट कर ही लीजिएगा, आपके घर में ब्लैक मैजिक है पूरे घर में घुमाइएगा, अपने सर से 7 टाइम घुमाइएगा, और घर के बाहर जाके जला दीजिएगा, अपने घर में हर कोने में फिट करी और 2 लौंग के जोड़े ये रख दीजिएगा, अपने बेडरूम में भी, अपने सिरहाने भी, आपको जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक है तो अपने पिलो के पास फिट करी रखूँ, हर महीने उसको चेंज करो, गंगा जल और गौमूत्र इसका पूरे घर में छिड़काव करो, और जिसको लग रहा है प्रभावित व्यक्ति है उसको पिलाओ। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिससे अगर ब्लैक मैजिक नॉर्मल तरीके से हुआ है, जैसे मुस्लिम तंत्र जो होते हैं वो 3 महीने से 6 महीने तक चलते हैं, और जो हमारे बहुत अघोरी टाइप के तंत्र होते हैं, जो शमशानी अभी मैं बात कर रही थी, तो वो तो बहुत लंबे चलते हैं, और अगर उनमें मारण टाइप की क्रियाएं की हों, जैसे ना किसी के नाम से दिए जाते हैं, बीज दिए जाते हैं, अब जैसे कामाख्या की जिक्र हो रहा है तो बता रही हूँ, हत्ता जोड़ी होती है एक, और हत्ता जोड़ी का प्रयोग ये होता है कि अगर आप उसको अपने लॉकर में रख देंगे हत्ता जोड़ी लाकर, तब तो आपके पास धन बहुत आएगा, एक सिंदूर की डिब्बी में रखनी होती है, लेकिन वही कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके सफेद तिल के साथ हत्ता जोड़ी को आप रख दें मारन, और उसके लिए बता रही हूँ, और वही तिल आपने उस व्यक्ति को खिला दिए, उस व्यक्ति को बचाने वाला कोई नहीं है, इस तरह की क्रियाएं भी होती हैं। तो इन क्रियाओं के लिए तो किसी फिर अघोरी के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अघोरी ने की है ये क्रियाएं, लेकिन अगर नॉर्मल किसी के पास जाकर किसी ने छोटा मोटा तंत्र कराया है तो जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ उससे आप काट कर सकते हो, घर में सरसों के दाने आप फेंक दीजिएगा, पीली सरसों जो होती है, और शाम के समय फ्राइडे को सैटरडे को घर में आप धूनी कीजिएगा, उसमें सरसों के दाने, गाय का उपला होगा, उसके ऊपर लोबान होगा, गुग्गुल होगा, इन सबकी आप घर में धूनी कीजिएगा, अपने मुख्य द्वार पर एक पोटली बना के लटका दीजिएगा, उसमें कपूर, फिटकरी, लौंग का जोड़ा और राई, ये सब बांध के एक काले कपड़े में मुख्य द्वार पर बांध दो, तो कोई भी बुरी नजर या फिर ब्लैक मैजिक आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनके कार्ड जैसे मैं बता रही हूँ ये हैं, पर किसी अघोरी से कराया है तो फिर उसका कार्ड फिर कोई बड़ा तांत्रिक ही करेगा।
तो मैम जैसे किसी ने किसी पर तंत्र भी अगराई तो वो तो जो करा रहा है वो तो गलत कर रहा है ना।
बहुत गलत कर रहा है, और ये नहीं करना चाहिए प्रिंसी जी, इसमें ना वंश के वंश खत्म होते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक किसी से आप करा के ला रहे हो, कोई भी चीज, खाने की चीज, पीने की चीज ऐसी ही ला रहे हो, वो कहाँ से आ रही है, हाथों से, आप ही के हाथों से आप लेके आ रहे हो, तो वो गंदी एनर्जी आपके हाथों में भी आ रही है, आप ले भले ही किसी और के लिए जा रहे हो पर वो एनर्जी आपके पास भी आई, और एनर्जी पे पूरा ब्रह्मांड है ये यूनिवर्स, तो वो एनर्जी आपके अंदर भी आ रही है, इम्पैक्ट आप पे भी डालेगी, और आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भला तो कभी हो ही नहीं सकता,
जी
और जिन्होंने ब्लैक मैजिक कराया है उनके वंश खत्म हुए हैं, तो ये कभी नहीं कराना चाहिए।
मैम, जो करता है जैसे हम किसी तांत्रिक के पास गए तो उन्होंने किया तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता।
तांत्रिकों का, तांत्रिकों इस तरह के जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ना उनका अंत मैंने खुद देखा है बहुत बुरा होता है, कहते हैं ना एक कहावत सुनी होगी कि इसके कर्म तो इतने बुरे हैं कि ये कीड़े पड़ पड़ के, एक कहावत है, मरेगा, तो वो ऐसा मैंने देखा है, एक साधक थे जिन्होंने गलत तरह की सिद्धि कर रखी थी और जब उनकी मृत्यु हुई, और वो करते यही काम थे, किसी का घर बर्बाद करना है, किसी की बेटी वशीकरण, ये सब गलत तरीके से काम करते थे, जब उनकी मृत्यु हुई ना तो जो कहावत थी कि कीड़े पड़ के, उनके शरीर से कीड़े निकले थे, उनको इस तरीके से व्याधि हुई थी, कुछ बीमारी हुई थी जिसमें उनके शरीर में कीड़े पड़े थे, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसका तो मैं प्रमाण दे सकती हूँ, तो ये कभी नहीं करने चाहिए, गलत काम कभी नहीं करने चाहिए, सात्विक साधनाओं में जरूर जाना चाहिए, और जो लोग साधना नहीं कर सकते, समय का अभाव है, वो पूजा करें, सात्विक पूजा, आप पूजा के बल पर, आप भी अपनी पूजा के बल पर, साधना अलग हो गई, उसमें पर्टिकुलर मंत्र की भी संख्या होती है, समय भी होता है, लेकिन नॉर्मल में पूजा के बल पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ब्लैक मैजिक की तरफ कभी किसी को नहीं जाना चाहिए।
मैम जैसे माँ कामाख्या धाम में जो उसकी सिंदूर की महत्वता काफी बताई जाती है, कहा जाता है उसको किसी को आकर्षित करना हो तो बस उसको अपने माथे पर लगा ले तो जो सामने वाला देख के आकर्षित हो जाता है।
जी बिल्कुल, क्योंकि माँ कामाख्या का सिंदूर जो है वो भी अंबुवाची के समय ही तैयार किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया ना कपड़ा प्रसाद में दिया
जी
जाता है,
जी
सिंदूर भी प्रसाद में दिया जाता है, वो माँ के चरणों का सिंदूर है ये समझिए, तो जब वो सिंदूर आप लगाएंगे सामने वाला व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाएगा, और सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए आप अष्टगंध, साथ में लाल चंदन, गुलाब जल और गंगा जल, ये सब मिश्रित करके भी लगा सकते हैं, तब भी सामने वाला व्यक्ति आकर्षित होगा, जैसे हम कभी हवन करते हैं ना अपने घर में, तो उस हवन के जो राख होती है उसको भी आप लगाइएगा, वो भी लोगों को आकर्षित करती है और आपके सारे काम बनाती है। अब जैसे आपने अभी मुझे नोटिस कर रहे हो, मैंने यहाँ थर्ड आई पर एक लगाया हुआ है, एक विशुद्धि पर,
जी
तो जब भी कोई पूजा करे ये दो जगह टीका जरूर लगाएं, इससे विशुद्धि एक्टिवेट होता है और थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तो ये आप लगा सकते हो। माँ कामाख्या का जो सिंदूर है वहां से लाएं, उसको डेली लगाओ आप, और डेली नहीं लगा पा रहे हो तो जब भी किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तब जरूर लगाएं उस सिंदूर को।
जैसे मैम कुछ लोग होते हैं जैसे किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, किसी के प्रति उसको लगाव है बट सामने वाला नहीं दिखाता वो लगाव, तो उसको शादी करनी तो वो बसीकरण करा देता है, तो उसके ऊपर निगेटिव इफेक्ट नहीं होते?
बिल्कुल होते हैं, ब्लैक मैजिक तो कभी नहीं कराना चाहिए। जैसा मैंने अभी भी बताया, ब्लैक मैजिक से आप उसका माइंड अपनी तरफ कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट उसको अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन वो कितने समय तक, एक तो इसमें समय अवधि होती है, दूसरा आपने कर लिया, अब वो आपको लड़का है या लड़की, अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए करा रही है या लड़का लड़की के लिए करा रहा है, ठीक है, अब आपने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन शादी के बाद, शादी के लिए ही कर रहे हो कि अट्रैक्ट हो रही है शादी हो जाए, कुछ समय बाद वो शादी भी असफल होगी, जैसे ही उस तंत्र का प्रभाव कम होगा और आपके ऊपर भी पूरा पूरा इम्पैक्ट आएगा। जैसा मैं बता रही हूँ, ब्लैक मैजिक नहीं करनी चाहिए, ये उल्टे भी पड़ते हैं, आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोग, जैसे ये वशीकरण से अलग हटके हो गया लोगों को कि ये खराब हो जाए, ये तबाह हो जाए, इसके परिवार तबाह हो जाए या इसकी नौकरी चली जाए, कितने तरीके के अलग अलग ब्लैक मैजिक करते हैं, तो जो करने वाले हैं ना उनका विनाश पहले सुनिश्चित है। हो सकता है कि व्यूअर्स कहेंगे कि मेरे साथ तो ब्लैक मैजिक हुआ लेकिन वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, हो सकता है वो आज फल फूल रहा हो क्योंकि पिछले जन्म के उसके कर्म अच्छे रहे हो, लेकिन जैसे ही वो, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है वो कर्मा का होता है, जैसे ही उसके कर्म, अच्छे कर्म का अकाउंट क्लोज होगा, वैसे ही जो उसने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है उसका इतना गंदा इम्पैक्ट आएगा, वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि अगर आप जैसे सात्विक होकर साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब आप पर कोई ब्लैक मैजिक काम भी नहीं करेगा, तो अपने ऑरा को इतना प्रोटेक्ट कर लो कि कोई ब्लैक मैजिक करना भी चाहे तो वो आप पर ब्लैक मैजिक ना कर पाए, और ब्लैक मैजिक कभी नहीं करना चाहिए। व्हाइट मैजिक करो ना, लोगों की हेल्प करो, और अगर आपसे कोई प्यार करता है तो उसको अपने गुणों से वैसे आकर्षित करो, अपनी बात सामने रखो, और जबरदस्ती हासिल किया गया प्यार तो प्यार होता भी नहीं है।
तो मैम जैसे आजकल लोगों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो उसके लिए उपाय वगैरह?
हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बुरी नजर भी होती है। अब कई बार हमारे लोग, अपने ही लोग खुश हो रहे हैं हमें देखकर, वो भी नजर लग गई, लेकिन ज्यादातर हमारी सफलता से कोई खुश नहीं होता तो बुरी नजर लगती है, और उसके प्रभाव में हम डे बाई डे हमारी ग्रोथ डाउन होती चली जाती है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि वो नजर दोष के प्रभाव में है, ये उपाय हर कोई हर किसी के ऊपर कर सकता है। किसी बच्चे को नजर लगी है तब भी कर सकते हैं, किसी महिला को लगी है, किसी पुरुष को लगी है, किसी भी पर्पज से किया जा सकता है। आपको सात रक्त गुंजा लेनी है, मार्केट में आती है रक्त गुंजा, वो लेकर आनी है सात, और आपको सात शनिवार, 7 सैटरडे लगातार उनसे अपनी नजर उतरवानी है, और घर के बाहर वो रक्त गुंजा फेंक दें, इस तरीके से फेंके कि वो किसी के या तो घर में ना जाएं, क्योंकि वो नजर का प्रभाव दूसरे पर भी जा सकता है, तो इस तरीके से एक निर्जन स्थान पर फेंक दें, रोड साइड जाके जहाँ खाली जगह हो वहां पर फेंके, ऐसे ही घर के बाहर ना फेंक दें तो किसी और पे वो असर ना हो जाए। तो आप 7 शनिवार लगातार ये कीजिएगा, आपकी कितनी भी बुरी से बुरी नजर लगी हो वो उतर जाएगी।
तो मैम जैसे कामाख्या में लोग जाते हैं तो क्या कामाख्या में धन प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है?
हाँ बिल्कुल पूरी होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, हत्ता जोड़ी, हत्ता जोड़ी होती है, नाग केसर होता है, ये जड़ियां हैं, मतलब जो पौधे होते हैं वनस्पतिक, उनकी ये जड़ होती हैं, तो एक लकड़ी के आकार में होती है, लकड़ी जो होती है उसी के आकार में होगी और उसके दो मुंह बने होंगे, हत्ता जोड़ी। ऐसे ये आपको सपेरों से भी मिल सकती है, जो नाग लेकर घूमते हैं ना
जी
उनसे, सपेरों से भी आपको मिल सकती है, क्योंकि जंगल में मिलती है ये। अब मार्केट में ऑनलाइन ना लें, क्योंकि वो सब कुछ मशीन से बन के आ रही हैं, वो ओरिजिनल नहीं होंगी, तो ओरिजिनल आप हत्ता जोड़ी लीजिएगा, हत्ता जोड़ी लेकर उसको अभिमंत्रित कीजिएगा माँ कामाख्या के मंदिर में। लेकिन जो लोग कामाख्या नहीं जा पा रहे हैं, वो इसी गुप्त नवरात्रि में अम्बुवाची पर्व के समय अपने मंदिर में उसको पूजा करें, शाम के समय श्रीम मंत्र का जाप करते हुए उसको अभिमंत्रित करें, 108 एक माला, और उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांध दें, या फिर एक डिब्बी लें, चांदी की डिब्बी या नॉर्मल डिब्बी, और सिंदूर रख दें, सिंदूर के ऊपर हत्था जोड़ी को रखें, अगर कपड़े में बांध रहे हैं तब भी सिंदूर रखना है, सिंदूर के ऊपर हत्था जोड़ी रखें और अपने लॉकर में रख दें, लॉकर ना हो तो जहाँ भी अलमीरा में पैसे रख रहे हैं वहां रख दें, और डेली धूप दीप दिखाएं, उनके पास अपार लक्ष्मी आती है। इसी तरह से काली हल्दी आती है, काली हल्दी को लेकर आए, पीली हल्दी सुनी होगी आपने, इसी तरह से तंत्र में काली हल्दी का भी जिक्र है, काली हल्दी लाओ, उसको इसी समय गुप्त नवरात्रि में या अंबुवाची के समय घर में अभिमंत्रित करो श्री मंत्र के साथ, उस पर रोली का टीका लगाओ, उसको भी कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख दो, आपके पास अचानक से धन के योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो मैम जैसे अभी आप बता रहे थे कि गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, तो इनमें लोग कहते हैं कि तांत्रिक लोगों के लिए नवरात्रे होते हैं,
जी,
तो इसमें जो आम लोग हैं वो कैसे पूजा करें?
आम लोग भी पूजा कर सकते हैं, तांत्रिक लोगों के लिए इसलिए बताई गई थी है क्योंकि तंत्र की एक सिद्धि होती है और ये समय कॉस्मिक एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है, तो इसलिए इनको गुप्त कर दिया गया था। लेकिन हम जो नॉर्मल इंसान है वो भी, जैसे हम नॉर्मल नवरात्रे करते हैं ना चैत्र वाले या
जी
आश्विन वाले, उसी प्रोसेस में हम इनमें पूजा कर सकते हैं। अब इनमें 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा कर सकते हैं, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, उस प्रोसेस में भी कर सकते हैं, और इनको 10 महाविद्याओं रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी 9 दिन तक जैसे पूजा करते हैं, आमतौर पर क्या होता है, किसी के घर अष्टमी पूजन हो गया, उसने खाना खा लिया, पूजा वहीं उसकी खत्म, 9 दिन पूरे नहीं हुए हैं, 9 दिन जिसकी नौमी पूज गई उसने भी खाना खा लिया, दशांश होता है हर पूजा का, आपको 9 दिनों तक अगर आप पूजा कर रहे हो, साधना की बात नहीं कर रहे, हम गृहस्थ लोगों की पूजा की बात कर रही हूँ, तो आपको 9 दिन पूजा करनी है, 9 देवियों की पूरी पूजा प्रोसेस में जाके करनी है, उसके बाद दशांश करना है जो 10वें दिन होता है, 10 महाविद्याओं का भी इसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं जैसे हम उन नवरात्रों में करते हैं, और आप नॉर्मल अपने मंदिर में जैसे भी माँ की मूर्ति स्थापित है उनकी पूजा करें, आसन बिछाएं और पाठ स्टार्ट कर सकते हैं।
मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और बहुत ही अच्छे से बताई, आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद।